कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊ तासु कृपानीर मलगति पावऊ। मनोजवं मा ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियम्बो भीमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं मा नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल जाय। श्री रामचंद्र भगवान के श्री प्रभुपाद के। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्री राम कथा के अंतिम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है, लगातार कई दिनों से भगवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। अरण्य कांड प्रारंभ करने से पहले भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति। इस संसार में यदि वैराग्य प्राप्त करना है, भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है, इस संसार के समस्त दुखों से मुक्त होकर नित्य सुख भगवान के धाम को प्राप्त करना है, तो एकमात्र उपाय है राम गुण गूढ़। भगवान के जो गूढ़ चरित्र है, इस चरित्र को समझना। जब तक जीव भगवान को समझ नहीं लेता है, तब तक वह भगवान के पास जा नहीं सकता है। इस सिद्धांत को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। तत्वतः, तत्व से यदि कोई मेरे जन्म और कर्म के बारे में वेत्ति जान लेता है, तो इस देह को त्यागने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, शरीर को छोड़ने के बाद वह जीव इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता है। उस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है जो जीव भगवान के बारे में तत्व से जान लेता है, भगवान के विषय में तत्व से समझ लेता है। भगवान के बारे में जानना होगा और वह भी तत्व से। तत्व से भगवान के विषय में जानने के लिए हमें भगवान के बारे में बहुत बहुत सुनना होगा। जब तक हम भगवान के बारे में सुनते नहीं हैं, तब तक हमारे मन में संशय बना रहता है, संदेह बना रहता है, भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। भगवान के ऊपर विश्वास होना यह है भक्ति का प्रथम चरण। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम के स्तर पर स्थित होना होगा और इस उस प्रेम के स्तर पर पहुंचने के लिए प्रथम सीढ़ी है आदो श्रद्धा। आदो श्रद्धा तत साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृष्टि निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, ये 9 स्तर पार करने के बाद हम भगवान को मिल सकते हैं। प्रथम चरण है श्रद्धा, विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए कि यही ईश्वर है। परंतु आज सबके मन में संशय है, भगवान कौन है, ये भगवान है या ये भगवान है, क्या राम भगवान हो सकते हैं? जिसे अयोध्या से निकाला गया, दर दर भटकते रहे, अपनी पत्नी के विरह में रोते रहे, क्या ये भगवान हो सकते हैं? ये तो साधारण पुरुष है। परंतु यदि ऐसे संशय से मुक्त होना है तो हमें बार बार भगवान की कथा सुनना होगा। निरंतर भगवान की कथा जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक भगवान के चरित्र में भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा। शिव जी कहते हैं पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे उमा, इस संसार में वह व्यक्ति भगवान के प्रति मोहित होते रहेंगे जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनेंगे। भगवत कथा सुनने से भगवान के प्रति जो संशय संदेह होता है वह दूर हो जाता है, और जो लोग हरि कथा नहीं सुनते हैं सदैव संशय में रहते हैं। ऐसा ही एक चरित्र अरण्य कांड के प्रारंभ में, 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा जिसका नाम है इंद्र, और इंद्र का एक पुत्र जिसका नाम था जयंत। एक दिन की बात, भगवान श्री रामचंद्र चित्रकूट नाम के पवित्र स्थान में एक बहुत सुंदर स्फटिक शिला के ऊपर बैठे थे। आज भी चित्रकूट में वह स्फटिक शिला है, और रम्य वातावरण था, बहुत सुंदर वन था, वहां पर निर्जन स्थान और कोई नहीं था। जगत जननी माता सीता उस स्फटिक शिला के ऊपर बैठी, भगवान श्री रामचंद्र बैठे, और पति पत्नी के अद्भुत चरित्र। भक्तों, उस समय भगवान श्री रामचंद्र अपने हाथों से अपनी पत्नी सीता के बाल में बेणी लगा रहे थे। कल एक माताजी ने मुझे कहा कि स्त्रियों के लिए तो बहुत उपदेश दिया, पतियों के लिए तो कुछ बोलो। मैंने कहा क्रम से सब आएगा, रामायण के क्रम में। भगवान श्री रामचंद्र अपने हाथों से अपनी पत्नी सीता के बाल में बेणी डाल रहे हैं, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो रहा है, कोई वरिष्ठ या कोई व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं है, और भगवान अपनी पत्नी की को सजा रहे हैं। आज तक देवी सीता भगवान श्री रामचंद्र की सेवा करती थी और आज अचानक भगवान श्री रामचंद्र देवी सीता की सेवा करने लगे। आचार्यों ने प्रश्न उठाया, ऐसा क्यों? तब उत्तर दिया कि आज तक भगवान श्री रामचंद्र की लीला चल रही थी, धनुष भंग करना और अनेक अनेक पराक्रम करना, परंतु भगवान ने सोचा कि अब मुझसे ज्यादा कष्ट सीता को होने जा रहा है, अब आगे की लीला में इस देवी सीता का महत्वपूर्ण भाग होगा, इसलिए इनकी सेवा करना आवश्यक है। भगवान श्री रामचंद्र देवी सीता के बाल में बहुत सुंदर बेणी डाल रहे थे। उस समय इंद्र का पुत्र जयंत आकाश के मार्ग से वहां पर आया और देखा कि ये भगवान है, क्या ये भगवान हो सकते हैं? ये तो अपनी पत्नी में आसक्त है, ये तो अपने पत्नी के आंखों के इशारे पर नाच रहे हैं, भगवान अपना कर्तव्य निभा रहे थे। परंतु इंद्र को लगा कि ये आसक्त है और उस समय इंद्र के मन में संदेह हुआ, संशय हुआ, क्योंकि आज तक भगवान की कथा नहीं सुनी थी। बोले ये भगवान हो नहीं सकते हैं। अब जयंत को संदेह हुआ, जयंत के पिता इंद्र को भी द्वापर युग में संदेह हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करने का आदेश दिए, तब इंद्र को भी संदेह हो गया कि ये 5 साल का बालक मेरी पूजा बंद करा के गोवर्धन की पत्थर की पूजा कराना चाहता है। इंद्र को वहां पर अभिमान हुआ और सांवर्तक मेघ को आदेश दे दिया, जाओ और पूरे ब्रज को 84 कोस ब्रज को बहा दो। जब इंद्र से यह अपराध हुआ तो उनके पुत्र से यह अपराध क्यों नहीं हो सकता है? पुत्र जयंत देखकर संदेह हुआ, ये भगवान हो नहीं सकते हैं। और उस समय जयंत कव्वे का रूप लेकर आया, देवी सीता उस स्फटिक शिला के ऊपर बैठी थी, कव्वे का रूप लेकर आया और देवी सीता के चरण में चोंच मारकर भाग गया। सीता के चरण से खून बहने लगा, भगवान श्री रामचंद्र देख नहीं पाए। भगवान ने देखा कि यदि मुझे मारा होता कोई तकलीफ नहीं, कोई अपराध नहीं, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति भगवान का अपराध कर देता है भगवान क्षमा कर देते हैं, परंतु यदि कोई भक्त का अपराध करता है, यदि कोई व्यक्ति भक्त को सताता है तो भगवान देख नहीं सकते हैं। मुझे चोंच मारी होती कोई तकलीफ नहीं थी, परंतु आज मेरी भक्ता, आज मेरी पत्नी सीता के चरणों में चोंच मारी और खून निकला। भगवान श्री रामचंद्र उस समय क्रोधित हो गए और घुटना टेक लिए। भगवान श्री रामचंद्र बहुत सुंदर वीरता की मुद्रता बनाकर अपने हाथ में धनुष लिया और एक तिनका उठाकर धनुष को कान तक खींचा और भगवान श्री रामचंद्र ने उस तिनके को छोड़ा है, वह तिनका उस कौवे के पीछे। कौवा डर गया भगवान के तीर से, भगवान के धनुष से वह तिनका निकला और कौवा समझ गया कि यह साक्षात भगवान है। वास्तव में इस जगत में भी भगवान के बाण से तीर निकल जाए तब सब लोग समझ जाते हैं कि ये भगवान है, पहले समझना चाहिए। भगवान क्रोधित हुए, भगवान के उस धनुष से तिनका निकला और तिनके ने उस कौवे का पीछा किया और वह कौवा तेज गति से वहां भागा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा चला भाजी वायस भय पावा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा चला भाजी वायस भय पावा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा चला भाजी वायस भय पावा। इंद्र पुत्र जयंत कौवे का रूप लेकर अनेक जगह पर भाग रहा है, भगवान का वह तीर उनके पीछे पीछे। सर्वप्रथम यह अपने पिता के लोक में स्वर्ग में गया, पिताजी आप मेरी रक्षा कीजिए, भगवान का यह बाण धनुष मेरे पीछे आ रहा है। इंद्र ने कहा तूने भगवान का अपराध किया, मैं तुझे पनाह नहीं दूंगा। वास्तव में जो लोग भगवान का अपराध करते हैं उसे कोई नहीं रख सकते हैं। जयंत, जयंत को जब पिता ने नहीं संभाला तब ब्रह्मा जी के पास गया ब्रह्म लोक में। हे ब्रह्मा जी, आप मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, भगवान का अपराध किया, भगवान को समझ नहीं पाया और भगवान का वह बाण मेरे पीछे आ रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा आज मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे बाप ने बाण छोड़ा है। कोई साधारण व्यक्ति ने छोड़ा होता तो मैं बचा लेता, परंतु जगदीश्वर ने यह छोड़ा है। वहां से दौड़ते दौड़ते जयंत कैलाश लोक में, शिव जी के लोक में गया। हे भोलेनाथ, हे जगत के, इस जगत के स्वामी, कृपया करके आप मेरी रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा आज मैं भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान विष्णु के चक्र से अम्बरीश महाराज का अपराध करके दुर्वासा ऋषि भागे थे, वैसे ये जयंत आज भाग रहा है परंतु कोई पनाह नहीं दे रहा है। जो लोग भगवान और भगवान के भक्तों का अपराध करते हैं उसे इस दुनिया में कोई नहीं रख सकता है। कहीं पर कहीं भी उनकी रक्षा हो नहीं सकती है। जो लोग भगवान का अपराध करते हैं माँ बाप उनके लिए वैरी हो जाते हैं, मित्र उनके लिए शत्रु हो जाते हैं। इसलिए भूल से भी भगवान का अपराध न हो। अनेक लोक लोकांतर में जयंत घुमा परंतु किसी ने शरण नहीं दी। तब जयंत दौड़ते दौड़ते जयंत ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने जगह नहीं दी, शिव जी ने नहीं दी, मेरे पिता इंद्र ने नहीं दी। उसी समय जयंत को दौड़ते दौड़ते रास्ते में नारद मुनि मिले। तो इस संसार में जब किसी पापी को कहीं भी शरण नहीं मिलती है उसे साधु के चरणों में शरण मिल जाती है, साधु उसे बचा लेते हैं। नारद मुनि रास्ते में मिले और नारद जी ने जयंत को बचाया। नारद देखा भी कल जयंता, लागी दया को मल चित संता। नारद जी ने देखा जब जयंत विकल है, दुखी है, जयंत को दुखी देखकर नारद जी के हृदय में दुख उत्पन्न हुआ। भक्तों, ये संतों का स्वभाव है। संतों का हृदय भगवान से भी कोमल होता है, ताजे मक्खन से भी कोमल होता है, दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाता है। आज जयंत जैसे पापी के दुख को देखकर भी नारद मुनि का हृदय पिघल गया। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहीं न जाना।
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहीं न जाना।
संतों का हृदय ताजे माखन के समान कोमल, परंतु गोस्वामी लिखते हैं बड़े बड़े कवियों ने संतों के हृदय की उपमा, संतों के हृदय की उपमा ताजे माखन के साथ दी, परंतु ये लोग को उपमा देने नहीं आया, क्योंकि ताजा माखन के नीचे जब आंच लगती है, जब गर्मी लगती है तब पिघल जाता है। ताजे माखन को जब अपने ऊपर आंच लगती है, अपने को गर्मी लगती है तब पिघलता है, परंतु संतों का हृदय तो दूसरों को दुखी देखकर यहां पर पिघल जाता है।
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहीं जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहीं जाना। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया।
क्योंकि संतों का स्वभाव होता है दूसरों के ऊपर उपकार करना। संत किसे कहते हैं, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। साधु कौन है? भक्तों, मात्र 150 रुपए का धोती कुर्ता और 5 रुपए की कंठी पहनकर कोई साधु नहीं बनता है। मात्र शिखा रख लेने से कोई साधु नहीं बनता है। साधु वेश धरी साधु न होई, साधु के कपड़े पहनने वाले को साधु नहीं कहा जाता है। साधु उसे कहते हैं जिसका जीवन दूसरों के लिए हो, मन वचन और काया से जो मात्र दूसरों के लिए उपकार करे, जो परोपकार करे, उसे शास्त्र संत उपमा देते हैं।
पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया।
पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। संतों का स्वभाव होता है दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, और मात्र दुखी नहीं होते हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं, अनुग्रह करते हैं। जयंत नारद मुनि के चरणों में गिरा है, हे नारद जी आप मेरी रक्षा कीजिए, भगवान मुझसे रूठे हैं। और केवल चार उंगली दूर वह अस्त्र खड़ाता भगवान का नारद मुनि को देखकर रुक गया। नारद मुनि ने कहा, जयंत जयंत जिसका अपराध हुआ है उनकी शरणों में जाओ। अपराध किया प्रभु राम का और शरण में जा रहे हो इंद्र की, अपराध किया राम का और शरण में जा रहे हो ब्रह्मा और शिव की। यदि हम भी हमारे जीवन में भी हमें जयंत से कोई बड़े नहीं है, हमारे वरिष्ठ जनों का अपराध करते हैं, कुटुंबी जनों का अपराध करते हैं, समाज का अपराध करते हैं, देश का अपराध करते हैं, और जाते हैं भगवान के पास, तमेव माता च पिता तमेव। जिसका अपराध करते हैं उनके शरणों में जाना चाहिए, तब तक वह अपराध क्षमा नहीं हो सकता है। भगवान के शरणों में जाओ। नारद जी के कहने पर जयंत भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में गया। भगवान शरणागत वत्सल है, यदि कोई भी व्यक्ति भगवान के चरणों में आ जाता है, भले कैसा भी क्यों ना हो, शरण में आए हुए व्यक्ति को भगवान अपना बना लेते हैं। वत्सल जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करने लगती है, वैसे भगवान अपने भक्तों को प्रेम करने लगते हैं जो भगवान की शरण में आ जाते हैं। इसलिए भगवान ने जयंत को क्षमा किया, परंतु वह तीर निकल चुका था, इसलिए भगवान ने जयंत को नहीं मारा, उस कव्वे बने हुए जयंत की एक आंख को फोड़ दिया। कव्वे की एक आंख फूट गई, भगवान ने यह साबित किया कि तुम्हारे जीवन में द्वेष उत्पन्न हुआ था, द्वेष द्वंद्व, परंतु आज से तुम्हारी एक दृष्टि होगी और उस एक दृष्टि से मात्र एक प्रभु को ही देखोगे। जयंत को छोड़ दिया। भक्तों उस दिन से आज तक कौवे एक आंख से ही देखते हैं। भगवान राम ने जिस दिन से जयंत की आंख को फोड़ा है, कौवे की परंपरा में एक ही आंख होती है। कल हमारी कथा में हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। भगवान श्री रामचंद्र सीता के वियोग में दर दर भटक रहे हैं। भटकते भटकते प्रभु शबरी का उद्धार करते हुए किष्किंधा नामक क्षेत्र में पहुंचे। रामायण का कांड बदलता है, किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। किष्किंधा क्षेत्र में रुष्मक नाम का एक पर्वत था, जहां पर सुग्रीव जी छिप कर बैठे थे, और उस सुग्रीव जी की सेवा में हनुमान जी महाराज उपस्थित थे। हनुमान जी महाराज इतने महान होकर भी सुग्रीव जी की सेवा क्यों करते थे? इसके पीछे एक रहस्य यह है, हनुमान जी महाराज सूर्य देवता के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। सोचा कि इस संसार में सब लोग अज्ञानी हैं, ज्ञान देने वाले भी पूर्ण नहीं हैं, क्यों न भगवान ने जिसको ज्ञान दिया उसी से ही ज्ञान प्राप्त करो। गीता में कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावान व्ययम् विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत स एवाय मया प्रोक्त योग प्रोक्त पुरातन भक्तो सिमे सखा चेति रहस्यमेत उत्तमम्। ये अर्जुन, ये गीता का ज्ञान मैं जो तुम्हें देने जा रहा हूं, सर्वप्रथम यह ज्ञान मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था, और हनुमान जी महाराज उस सूर्य देवता के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। सूर्य ने कहा मेरी गति बहुत तेज है, एक सेकंड में करोड़ों किलोमीटर का अंतर काटता हूं। बोले प्रभु आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी गति से दौड़ते रहिए, मैं उल्टा उल्टा दौड़ूंगा, रिवर्स गाड़ी चलती है ना, मैं रिवर्स में दौड़ूंगा, आप अपनी गति से दौड़ते रहिए, मुझे ज्ञान देते जाइए, मैं ज्ञान ग्रहण करता जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने सूर्य देवता से ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने कहा प्रभु गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। हमारे इतिहास में गुरु पहले ज्ञान देते थे और बाद में शिष्य गुरु दक्षिणा देते थे, परंतु आज तो घोर कलयुग आ गया है, बेचारे शिष्य गुरु जी के वहां जाते हैं बोर्ड पर लिखा होता है 1 महीने के 1000 रुपये फीस है, दे सकते हो तो ही आना, क्लासेस में लिखा होता है। हमारी वैदिक संस्कृति में ज्ञान को बांटा जाता था, परंतु आज ज्ञान को बेच रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बेचने से नहीं बढ़ता है, बेचने से तो ज्ञान घटता है, ज्ञान बांटना चाहिए। सूर्य देवता ने हनुमान जी महाराज को ज्ञान बांटा है, गुरु दक्षिणा क्या चाहिए। तब सूर्य देवता ने कहा मेरा ही एक अंश जिसका नाम है सुग्रीव किष्किंधा में रह रहा है, अपने भाई के डर से छिपा हुआ है, तुम जाओ और सुग्रीव की मदद करो। ये बार बार क्या हो रहा है, और ये साउंड भी ठीक नहीं है, सेटिंग देखो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
बस। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सूर्य देवता के कहने पर हनुमान जी महाराज किष्किंधा में रुष्मक नामक पर्वत पे आए, सुग्रीव जी के साथ रहने लगे। सुग्रीव जी ने दूर से देखा कि दो तपस्वी के वेश में दूर से दो लोग आ रहे हैं, कहीं ये बाली के दूत तो नहीं, यदि बाली के दूत होते होंगे तो हम यहां से भाग जाएंगे। सुग्रीव जी अपने भाई बाली से बहुत डरते थे, हनुमान जी को कहा कि आप जाओ, आप ब्रह्मचारी का रूप लेकर जाओ और जरा परीक्षण करो कौन है। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी का रूप लेकर गए, भगवान श्री रामचंद्र को पूछा आप कौन हो, यहां पर क्यों आए हो। जैसे ही भगवान रामचंद्र ने कहा हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनका नाम लक्ष्मण और मेरा नाम राम है। हनुमान जी महाराज ने जब भगवान के मुख से राम नाम सुना, ये तो मेरे इष्ट है, ये तो मेरे स्वामी है, ये तो मेरे प्रभु है, और आज जो स्वामी जो भगवान पूरी दुनिया की परीक्षा लेता है मैं उनकी परीक्षा लेने चला। हनुमान जी महाराज के हृदय में बहुत दुख हुआ, वे हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपके चरणों में। भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान जी को उठा लिया, उठाकर अपने गले लगा लिया, मित्र आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, आपका स्थान मेरे हृदय में है। भगवान राम के मुख से निकल गया मित्र, आज से तुम मेरे मित्र हो। उस दिन से हनुमान जी महाराज ने भगवान को मित्र बना लिया और मित्रता निभाकर बता दिया। मित्रता किसे कहते हैं, दास भाव किसे कहते हैं, यदि ये जानना है तो हनुमान जी महाराज के चरित्र से जानिए। एक से एक हनुमान जी महाराज ने कार्य किए हैं, अद्भुत कार्य। हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव जी के पास लेकर गए, सुग्रीव जी के साथ मित्रता हुई। और भगवान ने कहा कि हम हमारी पत्नी को ढूंढते ढूंढते यहां पर आए हैं। आपने मेरी पत्नी सीता को देखा है? जब दुष्ट रावण सीता जी का हरण करके जा रहा था, उस समय सीता जी ने अपने हाथों में, गले में, पांव में जितने भी श्रृंगार पहने थे, वह सारे श्रृंगार एक कपड़े में लपेटकर उसे इस रुष्मक पर्वत पर फेंका था और सुग्रीव जी ने उसे रख लिया था। सुग्रीव जी ने बताया कि ये हमें, ये श्रृंगार अलंकार हमें मिले हैं। और भगवान श्री रामचंद्र ने जब उसे खोल कर देखा, भगवान राम को पता चला कि ये तो मेरी पत्नी, ये तो सीता के श्रृंगार है। भगवान श्री रामचंद्र रोते रोते लखन को कहे, लखन देखो ये हार सीता का है ना, लखन देखो ये चूड़ी सीता की है ना, लखन ये देखो ये बाली सीता की है ना। परंतु भक्तों, लखन लाल अपनी नजर झुका कर खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़कर उस समय महात्मा लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र को कहे कि प्रभु, प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिएगा, आप मुझे बता रहे हैं कि ये हार सीता का है, ये चूड़ी सीता की है, ये कंगन सीता के हैं, ये बाली सीता की हैं, परंतु प्रभु मैं इनमें से एक भी श्रृंगार को पहचान नहीं रहा हूं। कारण प्रभु, कारण यही है कि मैंने आज तक मेरी मां सीता के सामने नजर उठाकर देखा नहीं। आज तक मैंने मेरी मां, मेरी भाभी के गले में, हाथ में आज तक मैंने नजर नहीं डाली। एक बार भी नजर पड़ी होती तो मैं पहचान लिया होता। क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं नहीं पहचान रहा हूं। परंतु प्रभु, इस कपड़े में जो नूपुर है ना, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं प्रभु, ये नूपुर मेरे भाभी के हैं, क्योंकि मेरी नजर सदैव उनके चरणों में रहती थी और इस नूपुर को मैं पहचान रहा हूं। ये है लखनलाल। लक्ष्मण जी ने कह दिया ये सीता जी के अलंकार है। बाली के साथ मित्रता हुई। बाली ने, सुग्रीव जी ने वादा किया कि हम आपको सीता को ढूंढने में मदद करेंगे। सुग्रीव जी को बाली के साथ दुश्मनावट थी, डर था बाली से। भगवान श्री रामचंद्र ने सुग्रीव जी और बाली का युद्ध करवाया और भगवान की कृपा से बाली का उद्धार हुआ। बाली की मृत्यु होने पर बाली की पत्नी का नाम था तारा, बहुत दुखी हो गई। भगवान श्री रामचंद्र ने बहुत सुंदर प्रवचन किया, उपदेश किया। समय नहीं है, परंतु आप रामायण पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर उपदेश। तत्पश्चात बाली के पुत्र अंगद को भगवान ने अपनी सेना का युवराज बनाया और सुग्रीव जी ने सीता की खोज प्रारंभ की। सुग्रीव जी ने अपनी सेना के 4 विभाग किए और भारत के चारों कोने में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत, ये अपनी सेना के चारों विभाग को चारों भाग में भेज दिया, सीता को ढूंढ कर आओ। दक्षिण भारत में जो सेना गई, उस सेना में अनेक अनेक वीर थे, अंगद जी थे, जामवन जी थे, हनुमान जी महाराज, ये सब दक्षिण वाले थे। सीता का अन्वेषण करते करते जा रहे हैं। जाते जाते एक बहुत बड़ा बड़ा पर्वत और पर्वत की कंदरा में खड़े रहकर अंगद जी और जामवन जी बहुत सुंदर वार्तालाप कर रहे हैं। जामवन जी प्रवचन सुना रहे हैं और उस समय उस पर्वत की कंदरा में एक गीध बैठा था और गीध ने उस बात को सुना और सोचा कि यहां पर अनेक बंदर आए हैं, आज मैं सबको खा जाऊंगा। वह गीध कंदरा से बाहर निकला, भयानक, बहुत विशाल गीध था, साधारण गीध नहीं था। वह गिद्ध बाहर आया और सबको खाने का प्रयास, और उस समय अंगद के मुख से निकल गया कि कहां वह गिद्ध जो भगवान श्री रामचंद्र की रक्षा करने में अपने प्राण को त्याग दिया, और कहां ये गिद्ध जो भगवान राम के सेवक को खाने चला है। बोले कहां वह जटायु जो भगवान को देखते देखते अपने प्राण को त्यागा, परम गति को प्राप्त हुआ, और कहां ये गिद्ध। जटायु का नाम सुनते ही वो गिद्ध वहां पर रुक गया। बोले जटायु, आप जटायु के विषय में जानते हो? बोले हां। बोले प्रभु राम की सेवा में उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तब इस गिद्ध ने कहा, मैं उसी जटायु का भाई हूं, मेरा नाम संपाति है। कथा बताई कि हम दोनों भाई थे और एक दिन हम दोनों के बीच में शर्त लगी कि कौन पहले सूर्य को छूकर आता है। संसार में भी शर्त लगाते हैं, कौन पहले उस पेड़ को छूकर आए, लिफ्ट को छूकर आए, इसको छूकर आए, लेकिन ये दोनों ने क्या शर्त लगाई, कौन पहले सूर्य को छूकर आता है। और ये दोनों तेज गति से सूर्य को छूने के लिए निकले, परंतु जटायु ने देखा सूर्य का तेज बहुत है, सूर्य का तेज लगने के कारण जटायु वहां से वापस आ गया। परंतु संपाति थोड़ा अहंकारी था, मद था, अभिमान था, और अहंकार के कारण वो सूर्य के पास जाता गया। सूर्य के पास पहुंचते ही इनकी दोनों पंख जल गई, दोनों पंख जल गई और पृथ्वी के ऊपर गिरा। गिरते ही उसे बहुत शोक हुआ। उस समय चंद्रमा नाम के ऋषि वहां से निकले और ये इनको प्रणाम किया, प्रभु मेरी दोनों पंख जल गई हैं, अब मैं क्या करूंगा। चंद्रमा नाम के ऋषि ने आशीर्वाद दिया, अनुग्रह किया, यद्यपि तुम्हारी पंख जल गई है, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, एक दिन भगवान के परम भक्त, भगवान के परम सेवक सीता को ढूंढते ढूंढते यहां पर आएंगे, और जब तुम उनकी सेवा करोगे तो तुम्हारी पंख वापस आ जाएगी, बस उनकी सेवा कर देना। देखिए यहां पर एक सिद्धांत स्थापित हुआ, जो लोग भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं उनकी जली हुई पंख भी वापस आ जाती है। अर्थात किसी के शरीर में कुछ रोग है, कुछ तकलीफ है, कोई पीड़ित है, परंतु ऋषिकेण ऋषिकेशनम सेवनम भक्ति रुच्यते, इस ऋषि इस इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी की सेवा करने से हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। संपाति के हृदय में बहुत दुख हुआ, मेरे भाई की मृत्यु हो गई। बोले हां, आप एक सहायता करोगे, आप मुझे उठाकर समंदर के पास लेकर जाओ, मैं मेरे भाई का श्राद्ध तर्पण करना चाहता हूं। ये सब लोग संपाति को उठाकर समुद्र में तर्पण करने के लेकर गए। भक्तों, पक्षियों के जीवन में भी श्राद्ध होता है, परंतु दुर्भाग्य मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी पुत्र लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं। निम्न योनि में, पक्षी की योनि में जब यह श्राद्ध का विधि विधान है, तब मनुष्य योनि में क्यों नहीं होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र ने श्राद्ध किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया, परंतु आज के लोग अपने आप को इतना पवित्र मानते हैं, श्राद्ध करने की क्या जरूरत है, किया। और जैसे ही श्राद्ध किया और भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करने का संकल्प लिया, उनकी दोनों पंख आ गई, आकाश में तेज गति से उड़कर बहुत ऊपर जाकर उस गिद्ध ने देख लिया देवी सीता कहां है। नीचे आकर बताया कि आप जिस सीता को ढूंढ रहे हो, इस समुद्र के पार, समुद्र के पार त्रिकुट नाम का एक पर्वत है, और त्रिकुट नाम के पर्वत पर सोने की लंका बसी हुई है, उस सोने की लंका के बीचों बीच आजू बाजू में टाइट सिक्योरिटी है और उसके बीचों बीच एक अशोक वन है और अशोक वन के बीच में देवी सीता को बंदी बनाकर रखा है, ये मेरी आंखों से मैं देख रहा हूं। और दोनों हाथ जोड़ के हनुमान जामवंत जी अंगद इत्यादि को कहने लगे। संपाते ने कहा, यदि मेरे बस में होता तो मैं आपको मदद करता, परंतु मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे में शक्ति नहीं रही है, आप अपनी शक्ति से। सब लोग निराश हो गए कि समुद्र के पार वह भी त्रिकुट पर्वत पर लंका में इतनी टाइट सिक्योरिटी में कौन जाकर देखेगा। तब संपति ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, मोही बिलो की धरा हूं मन धीरा, राम कृपा कस भयऊ शरीरा, पापीय जाकर राम सुमिरही, अतिय पार भव सागर तरही। आप लोग चिंता मत करो, चिंता छोड़ दीजिए, और चिंता छोड़कर भगवान की सेवा के लिए निकल जाइए। क्योंकि इस संसार में जो लोग भगवान का एक बार नाम ले लेते हैं वो इस भवसागर को पार कर जाते हैं। आप उस भगवान की सेवा करने के लिए निकले हो, ये साधारण सागर को पार करना कोई मुश्किल नहीं है। हृदय में उत्साह रखो। संपाति इतना कह के चले गए और यह सारी सेना समुद्र के तट पर आ गई, और समुद्र के तट पर आकर सब लोग मीटिंग करने लगे कि अब इस समुद्र को पार कौन करे। सब ने जामवंत जी की ओर देखा, जामवंत महाराज आप तो शक्तिशाली हो। तब जामवंत जी कहते हैं, जरठ भयूं अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जामवंत जी ने कहा कि आप लोग सत्य कह रहे हो, मैं शक्तिशाली हूं, परंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, जिस दिन भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्ग प्रदान करने के लिए बलि महाराज का वह राज्य छीनने के लिए दो कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, उस समय मैं जवान था। जामवंत जी कह रहे हैं, मैं जवान था और कुछ ही मिनटों में भगवान की सात परिक्रमा करके पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ गया था, लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, आप मुझे रहने दीजिए, मैं नहीं जा सकता हूं। तब सब लोगों की दृष्टि अंगद जी के ऊपर गई। अंगद बाली के पुत्र परम पराक्रमी थे। अंगद जी आप जाइए। तब अंगद जी कहते, अंगत कही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। आप सब लोग मिलकर मेरा नाम ले रहे हो, मैं सत्य कहता हूं, मैं लंका पहुंच तो जाऊंगा, मेरे में यह शक्ति है कि इस समुद्र को पार करके लंका पहुंच जाऊंगा, परंतु रिटर्न आने में संदेह है, वापस की कोई गारंटी नहीं है, चला तो जाऊंगा और नहीं आ पाया तो शहीद हो जाऊंगा, क्यों खामखा मारना चाहते हो मुझे। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, अब क्या करे, समुद्र के पार लंका में सीता है, अब उसे कौन देखने जाए, कैसे खबर ले। सब लोग शांत हो गए, बहुत बड़ा प्रश्न उठा, सब लोग निराश हो गए। हनुमान जी महाराज थे, परंतु हनुमान जी को ऋषियों ने श्राप दिया था, जब तक उनको उनकी शक्ति याद न कराया जाए तब तक वो कुछ नहीं कर सकते थे।